यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। जब मूल आवाज पुकारी जाती है तो यह मिट नहीं जाती है वरन आत्मिक क्षेत्र में आकर ठहर जाती है। जब न्याय अनुसार उचित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो यह तुरंत ही अपना कार्य शुरू करती है। अगर हम सामान्य रूप से कहें न्याय अनुसार उचित शर्तों को पूरा करने का मतलब है अपने पात्र को तैयार करना। यह है आत्मिक पात्र को तैयार करना। आशीषों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पालन करना है जैसे ही आप संदेश को सुनते हैं। जब मूल आवाज पुकारी जाती है तो अब आप अपने हृदय की गहराई से पालन कर सकते हैं। वास्तविकता में आशीष क्या है? लोगों के पास आशीषों के ऊपर अलग अलग राय हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहा है उन आशीषों के पीछे शर्तें हैं। सबसे पहले हैं, आपके पास चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए वरन अपने परिवार या अपने जीवन में लोगों के लिए। अगला, अपने हृदय में शांति होना आशीष है क्योंकि आप किसी के साथ झगड़ा नहीं करते वरन सबके साथ मेल मिलाप से रहते हैं। और उससे भी बढ़कर यदि आप तमाम आवश्यक चीजों का इस धरती पर बहुतायत से आनंद ले सकें और दूसरों के साथ उन बातों को उन चीजों को बांट सकें तो यह आशीष है। और इसे भी बढ़कर कोई ऐसा होना जिसके साथ आप आत्मिक प्रेम बांट सकें और कोई ऐसा होना जिसे आप प्रेम रख सकें और अपना जीवन दे सकें, यह आशीष है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आत्मिक शोक को परमेश्वर तसल्ली देता है और आशीषों के साथ वापस चुकाता है। और मैं आसानी से उन तमाम बातों को पार कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास विश्वास है। और साथ ही मैं किसी से झगड़ा नहीं करता वरन सबके साथ मेल मिलाप रखता हूं, इसलिए मेरे हृदय में मेल है, शांति है। मैं इस आशीषों का आनंद ले रहा हूं और वो भी लंबे समय से। मुझे आशा है कि आप भी सबके साथ मेल मिलाप रख सकें और इस शांति का अपने हृदय में भी आनंद कर सकें। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप रखना। केवल तभी आप सच्ची शांति का आनंद अपने हृदय में भी कर सकते हैं। अगला, मैं कह सकता हूं कि मैं तमाम आवश्यक चीजों का इस धरती पर आनंद ले सकता हूं और इसे भी बढ़कर मैं अपनी तात्विक आशीषें बहुत से लोगों के साथ बांटता हूं। एक बार मैं बहुत मुश्किल आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, दर्द में और बीमारियों में 7 सालों तक पीड़ित था, लेकिन जिस क्षण से मैं परमेश्वर से मिला हूं उससे चंगाई को प्राप्त किया है। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। जिस क्षण से मैंने आत्मा का हृदय साधा है परमेश्वर ने अत्यंत आर्थिक आशीषें उंडेलना शुरू कर दिया है। जिस दिन से मैंने आत्मा का हृदय साध लिया था मैंने आत्मिक आशीषें प्राप्त करना शुरू कर दिया। ना मेरे पास कोई कमी घटी है वरन मैं एक आशीषित जीवन जी रहा हूं जिसके द्वारा आसपास बहुत से लोगों की मदद मैं कर पा रहा हूं। मेरे पास बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं आत्मिक प्रेम बांटता हूं और मेरे पास वो प्रिय लोग हैं जिनके लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं। मेरा हृदय, मेरे विचार, वो आत्मा के लोगों के साथ एक है और सत्य में और प्रभु में वो एक है और वही है उनके साथ जो आत्मा के लोग हैं। और तथ्य यह है कि आप में से बहुत से आत्मिक प्रेम को मेरे साथ बांटने के लिए उभर रहे हैं। हालांकि वे अपना जीवन भी मेरे लिए दे सकते हैं, इसलिए मेरे पास एक भी चीज की कमी नहीं है और मैं ह्याओ से भरा हूं कि मैं सबसे महान आशीषें का आनंद ले रहा हूं। इसलिए संसारिक लोग किन बातों को आशीषें मानते हैं? आमतौर पर वो अपने आप को आशीषित मानते हैं यदि उनकी आधारित चीजें पूरी होती हैं और उनके पास कुछ ना कुछ अधिकार, संपत्ति या सामर्थ्य हो। परंतु यदि भी आपके पास ये सब बातें हो, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होगा अगर आप अपना स्वास्थ्य खो बैठे। दूसरी तरफ अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो लेकिन जीवन में अलग अलग मुश्किलों से आप गुजर जाएं, तो आपको आशीषित नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को देखना सामान्य है जिनके पास एक चीज होती है लेकिन दूसरी की कमी होती है। यद्यपि ऐसा लगता है कि उनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन तो भी प्रत्येक के पास अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। और यद्यपि एक व्यक्ति इस धरती पर सारी आशीषों का आनंद ले सके और इस संसार में किसी बात की कमी ना हो, परंतु उनका क्या उपयोग होगा अगर वो व्यक्ति इन तमाम बातों के बावजूद भी नरक जाए। जैसा कि आपको बताया गया है, जिस प्रकार की आशीषें संसारिक लोग खोजते हैं वो सिद्ध नहीं है, लेकिन हम मसीही हम इस तरह की अपूर्ण संसारिक आशीषों की खोज में नहीं रहते। असल में आशीषित लोग वे हैं जिन्होंने बताई गई चार आशीषों को प्राप्त कर लिया है। उनके पास कोई चिंता नहीं, हृदय में शांति है, वो इस धरती पर तमाम आवश्यक चीजों का बहुतायत से आनंद लेते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं। उनके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ वे आत्मिक प्रेम बांटते हैं और वो प्रिय लोग हैं जिनके लिए वे अपना जीवन दे सकते हैं और इससे भी बढ़कर वो अनंत जीवन की आशीषें प्राप्त करते हैं। अनंत जीवन की आशीषें, ऐसा जीवन जो अनंत काल तक नरक में नहीं जाएगा, ये है सबसे महान आशीष। आपका अधिकार, सामर्थ्य, संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे बच्चे, क्या लाभ होगा अगर आपके जीवन का नतीजा नरक होगा? कल्पना कीजिए कि आप कुछ दशकों तक अपने जीवन में इस तरह की आशीष प्राप्त करेंगे और अब आप कल्पना कीजिए कि आप जलती हुई आग में नरक में बाकी जीवन जी रहे हैं, तो फिर यहां पर जो आशीषों का आप आनंद लेंगे उसका क्या लाभ होगा? और वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं अपने प्रेम के कारण उसके लिए, वो वास्तविकता में आशीषित है। जैसे कि भजन संहिता 34 अध्याय 9 पद कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को किसी बात की घटी नहीं होती। वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रेम करते हैं उसे, उनके पास किसी बात की घटी नहीं होती। यदि आप केवल परमेश्वर का भय माने, अगर आपने वो कर दिया है तो आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। आप परमेश्वर का भय मानिए। क्या आप अपने परमेश्वर का भय मानते हैं? आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए, आत्मा और परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब आप आर्थिक मदद किसी को देते हैं उदाहरण के लिए, क्या आप उपयुक्त तरीके से ऐसा करते हैं? अपने दाहिने हाथ को मत बताइए जो आपका बायां हाथ करता है। बाइबल हमें ऐसा कहती है, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या अर्थ है इसका? गरीबों को ऐसी मदद करना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो स्वयं सेवा से होता है। आप संकोच के साथ मत कीजिए, स्वयं सेवा से कीजिए। जब आप किसी गरीब को देखते हैं या आपसे भी कहीं ज्यादा बीमारी में देखते हैं, आप स्वयं सेवा से उसकी मदद करना चाहते हैं, संकोच के साथ नहीं। गरीब को देने के बाद आपको आनंद होता है। गरीब को देने के बाद वो व्यक्ति मुश्किलों से बाहर निकल पाएगा, उसके लिए आप आनंदित होते हैं। आप गरीब को इसीलिए नहीं देते कि आप अपनी संपत्ति की बढ़ाई करें। जब आप देते हैं, यद्यपि आपके पास पर्याप्त ना भी हो, तो भी आप आनंदित होते हैं, इसलिए आप खुशी और आनंद के साथ देते हैं। क्या खाली आपको इतना ही करना है? आपका बायां हाथ ना जानने पाए जो आपके दाएं हाथ ने किया है। क्या आपने इस प्रकार से दिया है? कुछ लोग देने के बाद अपनी बड़ाई करना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने दिया। वो कहते हैं, आपको पता है मैंने उसकी और उसकी मदद की और ये बड़ा लाभकारी था। हमारे प्रभु ने हमसे कहा है कि हम उस तरह ना दें। 1970 और 80 के दशक में कोरिया में देश का कोई हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा, तूफान आने के बाद या मानसून के बाद बड़े नुकसान का सामना करता था। और उस वक्त बड़े बड़े जो हेड्स होते हैं कंपनियों के, संस्थाओं के, वो $100,000 वहां पर लोगों को देते थे और उसके बाद वो हेडलाइंस बनाते थे पेपर्स में, समाचार पत्रों में, अपने नाम और धनराशि के साथ वो समाचार पत्रों में छपवाते थे। उस वक्त $100,000 एक बड़ी धनराशि थी और वो लोग जो इतनी धनराशि देते थे उनका बड़ा सम्मान होता था। लेकिन देने के बाद कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो देना चाहते होंगे, वरन वो अपने लिए और अपने कंपनी के लिए लोगों को दिखाना चाहते थे इसलिए दिया। और ये आलोचना करने वाले लोग वो होते थे जिन्होंने कुछ नहीं दिया, जिन्होंने दिया उनकी आलोचना करते थे, वो बिना कुछ दिए हुए आलोचना करते थे। और यदि उन्होंने दिया भी तो छोटे से प्रकाश बिंदु के समान, और वो अपनी बड़ाई करते हैं। जो कुछ भी लोग दें वो इस तरह से दें जिसके कारण दूसरे लोगों के पास आलोचना करने की बुनियाद ना रहे। गरीबों को देना वो तरीका नहीं है कि आप अपनी बड़ाई करें। सच्चा देना निस्वार्थ हृदय से आता है, पूरी तरह से बड़ाई से रहित रहता है। आपने बाइबल में देने के विषय में पढ़ा है, आपने पढ़ा कि यीशु ने देने के विषय में क्या कहा मत्ती की किताब में। तो फिर आपको जांचना है कि आप किस तरह से देते हैं। क्या आप देने के बाद बड़ाई करना चाहते हैं? क्या आपको असुविधा होती है देने के बाद, ये जानते हुए कि आपके लिए अब पर्याप्त नहीं है? यदि आपके पास इस तरह के विचार रहे हैं और असुविधा रही है तो आपका देना सत्य में नहीं है। ये बड़ा आसान उदाहरण है, आप इस तरह से अपने आप को जांच सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके द्वारा आप अपने आप को जांच सकते हैं। लोग विश्वास के चट्टान पर खड़े होते हैं, वो आमतौर पर ऐसी परीक्षाओं को पार करते हैं। आत्मा और संपूर्ण आत्मा का हृदय साधने के लिए आपको अवश्य ही अपने आप को इस बातों से जांचना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या आपका देना सत्य में रहा है या नहीं। आप गंभीरता पूर्वक 10 आज्ञाओं को मान रहे हैं और पूरे हृदय के साथ जो कुछ बाइबल में पढ़ते हैं उसके अनुसार जी रहे हैं। केवल तब जब आप अपने आप को इस तरह के उदाहरणों से जांचते हैं और सुधारते हैं तभी आप आत्मा का हृदय साध सकते हैं। बुरे लोग उन्हें छू नहीं सकते और उन्हें लगता है कि सब कुछ पर्याप्त है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को भलाई में उत्पन्न करता है, इसलिए किसी बात का भय नहीं होता। और इससे भी बढ़कर जिस तरह से अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया, यदि हम हमेशा परमेश्वर के साथ चल सकें, उसके साथ नजदीकी संगति के द्वारा और ऊपर से सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें कि उसके कार्य प्रकट कर सकें, तो हमें वास्तविकता में आशीषित माना जा सकता है। और अब आप एक क्षण लीजिए, समय लीजिए कि अपने आप को जान सके और उस संदेश को अपने ऊपर लागू कर सके जो संदेश आप सुन रहे हैं। आप सोचिए, क्या आप वास्तविकता में आशीषित हैं और आप कितने योग्य हैं कि सच्ची आशीषें प्राप्त कर सकें। प्यारे भाई और बहनों, सब आशीषों में महत्वपूर्ण आशीष है अनंत जीवन की आशीष और आपके प्राण की उन्नति। जब आप अनंत जीवन की आशीषें प्राप्त करते हैं और जितना अधिक आपके प्राण की उन्नति की आशीष पाते हैं उतना ही अधिक आप तात्विक आशीषों का इस धरती पर भी आनंद कर सकते हैं। इस सत्र से मैं उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप आर्थिक आशीषें प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और इस तरह के संदेशों का प्रचार मैं कर सकता हूं क्योंकि आप में से बहुत से अपने प्राण की उन्नति की आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। आपके प्राण की उन्नति का साधारण अर्थ है आपकी आत्मा आपका स्वामी बन गई है और वह आपके प्राण और आपके शरीर को नियंत्रित करती है। आपको आत्मा देह और प्राण के संदेशों से याद होगा, इसका मतलब यह है कि आपका स्वामी आपकी आत्मा बन गई है, आपका प्राण और आपके देह को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति का प्राण समृद्ध होता है उसकी आत्मा उसका स्वामी बन जाता है। क्या आपकी आत्मा आपका स्वामी है? नहीं है। यह इस संबंध में है कि जिस सीमा तक आप पवित्र हो चुके हैं और आत्मा का हृदय साध लिया है या संपूर्ण आत्मा का, और आप कितने गहरे आत्मा में और संपूर्ण आत्मा में जा चुके हैं, यह निर्धारित करेगा कि किस सीमा या किस आकार की आशीषें आप आनंद करेंगे इस संसार में। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को अपना मार्गदर्शन बनाते हुए आइए हम पता लगाएंगे, अन्वेषण करेंगे उन लोगों का जिनको परमेश्वर आशीषें देता है और वो किस तरह की आशीषें प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आइए हम साथ मिलकर पढ़ेंगे उन आशीषों के बारे में जो परमेश्वर हमें देता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 3 पद में लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। पांच पद में, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। छह पद में, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। सात पद में, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। बारह पद में, तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और तेरा पद में, यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। आप कल्पना कीजिए कि आप ये सारी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपको खुशी नहीं होगी? क्या आप प्रसन्न नहीं होगे सिर्फ कल्पना करने के द्वारा? अगर मैं सच कहूं तो आप ये सारी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी आशीषें केवल कल्पना करने के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अवश्य ही परमेश्वर की शर्तों की साफ समझ होनी चाहिए जिसके द्वारा हम आशीषें पा सकते हैं, और हमें उनका अभ्यास करना है। एक और दो आयत हमें निश्चित मार्ग दिखाती हैं इन तमाम आशीषों को प्राप्त करने के लिए, और ये आयतें ना केवल बड़ों के लिए है जो अपना व्यापार चलाते हैं या फिर वो जो हर दिन नौकरियों पर जाते हैं, यहां तक कि छोटा बच्चा और विद्यार्थी, वो भी पिता परमेश्वर से सारी आशीषें प्राप्त कर सकते हैं अपने वातावरण और अपनी परिस्थितियों के अनुसार। बुजुर्ग और उन लोगों के साथ भी यही है जो ऐसा महसूस करते हैं कि वो अधिक शिक्षित नहीं है। आशीषों के यह वचन ये प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, परिस्थिति या स्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं दी जाते हैं, यह परमेश्वर की हर संतान पर लागू होते हैं। आइए हम इन दो आयतों को पढ़ेंगे। एक और दो आयत, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं माने। आइए अब हम तीन खास तरीकों को देखेंगे हम में से प्रत्येक के लिए कि हम परमेश्वर की आशीषित संतान बन सकें, जिसके लिए हम सब लालसा रखते हैं। पहला तरीका है परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं के संदर्भ में। एक आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यहां पर तेरे परमेश्वर यहोवा की आवाज बाइबल की 66 किताबों को दर्शाती है। जैसे कि दूसरा तिमोथियो 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल को मनुष्यों की इच्छा से नहीं लिखा गया, वरन उन लोगों के द्वारा जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त की और मनुष्यों की भाषा में उन्होंने लिखा परमेश्वर की इच्छा के आज्ञा अनुसार। बाइबल की 66 किताबों में यहोवा की यहोवाणी है, ये शब्द 166 बार बाइबल में मिलता है। यह हमें बताता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है जिसमें उसकी इच्छा और हृदय पाया जाता है। मूल रूप से परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमें परिश्रम पूर्वक उसके वचन को सुनना है। तो फिर सुनना इसका क्या अर्थ है? सुनने का मतलब खाली सुनना या बिना कानों से सुनना नहीं होता। मान लीजिए अगर आप किसी विद्यार्थी को बताएं कि अपने अध्यापक को सुनी, क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें खाली कानों से सुनना है और खाली उसे जानना है? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं। इसका मतलब यह है उन्हें सावधानी से सुनना है और उस पर चलना है। बच्चों को कहना कि आप अपने मम्मी पापा की बात सुनो, इसका भी यही अर्थ है कि उन्हें सुनना है, जो कुछ उन्हें कहा गया है वो करना है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर हमसे सुनने को कहता है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसका अभ्यास हमें करना है। और अब क्या आप परिश्रम पूर्वक परमेश्वर का वचन सुनते हैं? परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनने के लिए कम से कम अवश्य ही आपको पहले परिश्रम पूर्वक सुनना है और उसे सीखना है। आपको हमेशा बाइबल अपने करीब रखना है, निरंतर उसे पढ़ना है और उस पर मनन करना है, और साथ ही आपको आत्मिक संदेशों को भी सुनना है और उनकी रोटी बनानी है। जिन संदेशों का प्रचार मैं पुलपीट से करता हूं, वो मनुष्यों के विचार और ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुए हैं। जो कुछ भी प्रचार मैं करता हूं, स्वयं परमेश्वर ने उन्हें प्रकट किया है। सीधे रूप से कहें तो ये सारे संदेश परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर के जिन वचनों को आप सुनते हैं, किस सीमा तक आप उन्हें अभ्यास करते हैं? दूसरे शब्दों में, किस सीमा तक आप कम से कम बाइबल को पढ़ रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन की रोटी बना रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास केवल तभी कर सकते हैं जब आपने कम से कम उन्हें सुन लिया है या पढ़ लिया है। पाठ को पढ़े बगैर, संदेशों को सुने बगैर कैसे संभवतः आप परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे और अभ्यास कर पाएंगे? आज तक कितनी बार आपने परमेश्वर के वचन को सुनने में आनंद लिया है? शायद आपने कई दिनों तक परिश्रम किया, महीनों भर, सप्ताहों भर, लेकिन एक ही बार में सब छोड़ दिया, रोक दिया। सबसे पहले पहली शर्त को पूरा किए बगैर आप परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि आप परिश्रम पूर्वक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर रहे हैं और आत्मा के हृदय की लालसा रख रहे हैं। आपके अभ्यास में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अभ्यास करें, जिन्हें आप अपने अंदर भरते हैं, और तुरंत ही उसकी रोटी बनाएं। यह है परिश्रम पूर्वक परमेश्वर की आवाज को सुनना। अगला, हमें उसके तमाम आज्ञाओं को मानना है। और यहां से मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इस साल बहुत सी चीजें मूल आवाज से पूरी होगी जो बोली जा रही है। शारीरिक परिस्थितियों और अवस्था के बावजूद अगर आप विश्वास करें, तुरंत ही पालन करें, तो मूल आवाज कार्य करेंगे आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा। आप परमेश्वर से मिलेंगे, जो आपको योग्य बनाता है कि जो कुछ आप बोते हैं वही काटते हैं, और जो आपको आपके कामों के अनुसार वापस देता है। इस तरह के वचन धीमे नहीं होंगे, वो तुरंत ही पूरे होंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इन संदेशों को विश्वास से पाएं और प्रभु परमेश्वर की आवाज आज से शुरू होकर सुने। असंख्य गवाहियां आशीषों की आपसे सुनी जाएं और आपके द्वारा बांटी जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहां पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम जीसीएन टीवी दर्शकों पर और मानमिन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित, उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां ना रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।